الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله اس حلقہ میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جسٹ ٹو نو دی پیپل ہو کیم بیفور اس جن کو ہم سلف صالحین بھی کہتے ہیں بیسیکلی ہماری ہسٹری کیا تھی ٹھیک ہے ہم کہاں سے آئے تھے ہمارے بڑوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اور جس کی وجہ سے ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ کیا کیا گفٹس دیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی دنیا ان کے سامنے لا کے ساری جو ہے رکھ دی تھی کیا وجوہات تھی انہوں نے دنیا کو کیا کنسیڈر کیا تھا کس طرح دنیا کو لے کے چلے تھے اور آخرت کو کتنی امپورٹنس دی تھی وغیرہ وغیرہ جو بھی جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں ایکچولی یہ ٹاپک میں نے سوچا کہ اس لیے اس کو لے کے چلیں کیونکہ دا تھنگ از دیٹ ٹوڈے وی آر لیونگ ان اے ڈے اینڈ ایج ویئر وی گیٹ ٹو نو ٹوڈیز سیلیبریٹیز کی اگر بات کی جائے آج کی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہی ہمارے اسٹارز ہیں یہی ہمارے رول ماڈلز ہیں اور اس میں کوئی ایگزیجوریشن نہیں ہے اب کوئی بھی پاپولر کسی اسٹار کو لے لیں چاہے وہ مووی اسٹار ہے یا کوئی فٹ بال اسٹار ہے یا کوئی اور ماڈل اسٹار ہے کسی کی بات کی جائے آپ ان کی فالوئنگ ذرا چیک کریں کیا ہو کتنی فالوئنگ ہوتی ہے following in a sense people follow them people consider them to you know they consider them to be followed yani unko follow kiya jana chahiye this is the perception what people have about these people lekin sawal ye paida hota hai ki hame apni kya kehte hain hame apna background pata hona chahiye ki hum kis maqsad ke liye is duniya mein aaye hain aur hum agar kuch kaam agar hum aise kar rahe hain اور ہمیں ان کی کیا کہتے ہیں رزلٹ کا نہیں پتہ کہ یار اگر میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں اس کا مجھے کیا ریپرکشنز ہوں گے اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بندے کو جو ہے نا ایک یعنی جب رائٹ ڈائریکشن نہیں آتی تو پھر بندہ نا غلط ڈائریکشن میں جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو ہم نے کچھ جو ہے یہ جو سلف صالحین ہیں ان میں سے ہم نے کہا تھا کہ کچھ غرباء تھے سابقون الاولون تھے جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کرنے کی جو ہے کوشش کی تھی اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے جو ہے پہلے پہل کی تھی اور سبقت لے گئے تھے تو سملرلی جو پہلے شخص جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ کون تھے زید بن عمرو بن نفیل آئی ووڈ سجیسٹ ونس اگین کہ آپ لوگ الحمدللہ ادھر آتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ یعنی پین نوٹ بک وغیرہ لے کے آئے کہ نا اس کی وجہ یہ ہے اس میں ظاہر بات ہے ہسٹورک پہلو ہیں اور آپ کو بڑا یو ول بی سرپرائز ٹو نو دیٹ جو میں کچھ نام لے رہا ہوں گا نا بیک اینڈ پہ فار ایگزامپل حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے اور پھر میں یعنی زید بن عمر کی بارے میں بات ہو رہی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ایٹ دی یو نو کہیں نہ کہیں ان کے آپس میں نا ڈاٹس مل رہے ہوں گے ان کے جو ریلیشن ہے نا ان کے جو ان کا ریلیشن ہے وہ آپس میں نہ کہیں مل رہا ہوگا تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ المیہ یہ ہے انفارچونیٹلی ہمیں کچھ بھی اپنے جو ہے بڑوں کے بارے میں نہیں پتہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے بارے میں بات کی جائے تو بہت کم بندے ہیں جن کو اپنے نبی کے بارے ہمیں اپنے نبی کے بارے میں نہیں پتہ کہ ان کے کیا یعنی ہاؤ مینی چلڈرن ہی ہیڈ اور کب وہ پیدا ہوئے نبوت کب ملی کتنی انہوں نے شادی کی واٹ واز اے پرپز بیہائنڈ اٹ اور کتنی انہوں نے جو ہے غزوات جنگیں لڑیں اور کیا وجوہات جو ان کو جنگیں لڑنی پڑی پہلے وہ کیا کنسیڈر کیے جاتے تھے صادق الامین اس کے بعد جب نبوت آئی تب لوگوں نے کیسے ٹریٹ کیا کیا یعنی ان کی زندگی میں تھا کیا اور ہم سٹڈی کریں کہ یار ہمارے لیے کیا لیسن ہمارے لیے کیا سبق ہے اس کے ساتھ ساتھ جو صحابہ اکرام ہیں دی پیپل ہو بلیوڈ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اپنے اس دین کی خاطر یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خاطر انہوں نے سب کچھ اپنا جو ہے چھوڑ دیا تھا سو مچ سو کہ جن گھروں کے لیے ہم اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں کہ یار میں نے اپنا ایک گھر جو ہے کھڑا کرنا ہے مجھے ایک زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے تاکہ میں جو ہے کم از کم مجھے چھت میسر ہو انہی لوگوں نے دین کی خاطر اس کلمہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ دیے اگر تو کوئی خاتون ایمان لے کے آتی ہے خاوند نہیں لے کے اس نے اپنے خاوند کو چھوڑ دیا کہ نہیں میں اپنے ریلیٹیوز کو چھوڑ سکتی ہوں میں اپنے خاوند کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن میں اس دین کو اور اس کلمہ کو نہیں چھوڑ سکتی یعنی اس دین کی وجہ سے جب آپ پڑھتے ہیں کہ مکہ کے اندر یعنی فیملیز میں آپ یہ کہ دراریں آ گئی تھی یعنی یو نو یعنی جو رشتہ داریاں تھیں وہ ٹوٹ گئی تھی باپ مسلمان ہے تو بیٹا نہیں ہے بیٹا مسلمان ہے تو باپ نہیں ہے تو یہ یعنی یہ عالم تھا تو دی فرسٹ پرسن وچ وی ڈسکسڈ اباؤٹ واز زید بن عمر بن نفیل اور یہ وہ چار بندے تھے کوشش کروں گا جسٹ ٹو نو کہ آپ لوگ یعنی سوئے نہیں ہوئے تو میں آپ سے کچھ کاؤنٹر کوشچنس بھی کیا کروں گا انشاءاللہ चार बंदों के बारे में हमने ब्रीफली जो है मैंने सिर्फ नाम लिया था कि कुछ चार ऐसे बंदे थे, अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, ही वॉज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, और मक्का में शिर्क और बुराई आम हो चुकी थी वहाँ पे, और हैविंग सेड दैट कि हर किस्म की बुराई थी, लेकिन कुछ अभी भी कुछ लोग थे जो कि कहते थे कि यार ये जो कुछ हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा। मक्का वाले ये मानते थे कि हमें पैदा करने वाला खालिक मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द यू नो ड्यूरिंग द लाइन वो कहते थे कि नहीं यार हमें ये जो बुत है ना ये सिफारिश किया करते हैं हमारे लिए, और हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं, इबादत इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अपने रब से यानी अल्लाह से करीब कर लें। हालांकि ये मुशरिकीन मक्का का जो है तौर तरीका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द सेम थिंग इज़ एग्जिस्टिंग विद इन अस इफ़ यू टॉक अबाउट मुस्लिम्स। हमारे यहाँ मुसलमान भी ऐसे हैं कि जिनको शैतान ये पट्टी पढ़ाता है कि यार अल्लाह ताला इतने अजीम हैं और यानी कहाँ सातों आसमान के ऊपर वो जो है अल्लाह ताला हैं, और उनको कितने जो है काम होते हैं, जैसे सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं यस अलहुमन फिस समावाती वल अर्द कुल यौमिन हुवा फी शान, के जो जो कोई आसमान और ज़मीनों में हैं वो अल्लाह ताला से मांगते हैं, और अल्लाह ताला हर वक्त एक शान में हैं और यानी बिजी हैं, कोई ना कोई काम अल्लाह ताला काम में लगे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब यानी हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं, देर आर बिलियंस ऑफ पीपल हु आर लिविंग टुडे इन दिस वर्ल्ड, और बैक वक्त सबको रिस्क प्रोवाइड करना, सबकी दुआओं को सुनना, सबकी हाजात को पूरी करना, मुसीबतों को दूर करना, तो शैतान ये जो है दिल में डालता है कि अल्लाह ताला आई थिंक तुम तो एक अदना से आदमी हो, तुम्हारी कहाँ बात सुनेगा, तुम कहाँ एक वो एक जगह में रहते हो, और अल्लाह ताला को और बहुत सारे काम है माज़ल्ला। तो फिर इसका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इंसान ना फिर सहारा ढूंढ रहा होता है। एक्चुअली अगर दुनिया की बात की जाए, दुनियावी असबाब की बात की जाए, ठीक है आपका किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम है और वहाँ के CEO हैं, और आपने जाहिर बात है आपने पहले अपनी रिज्यूमे दी और वहाँ पे बात नहीं बन पाई, जो भी उनका HR मैनेजर था, अच्छा अब आप ढूंढ रहे होते हैं कोई तरीका, यार यहाँ तो डायरेक्टली मैं बॉस तक पहुँच तो नहीं सकता CEO के पास, तो कोई उनका कोई जानने वाला हो जाए, कोई उनका दोस्त हो जाए, या कोई ना कोई आप लिंक ढूंढ रहे होते हैं जिसके ज़रिए आपके लिए ना आसान हो जाए जो है वो बॉस तक पहुँचने के लिए। द सेम लॉजिक वी अप्लाई टू अल्लाह सुबहाना व तआला, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ ये है कि बॉस को तो नहीं पता कि मोहम्मद कोई बंदा है जो कि मुझे ढूंढ रहा है, अब्दुल्ला कोई बंदा है जो मेरी तलाश में, लेकिन अल्लाह सुबहाना व तआला ही नोज़ एवरीवन। आप अल्लाह ताला फरमाते हैं अला यअलमु मन खलक, इन बड़ी ज़बरदस्त आयात हैं, वल्लाही आप लोगों को कम अज़ कम जो जो सूरतें आती हैं ना, लेट से किसी बंदे को कम अज़ कम सूरह मुल्क ही आती है, यानी हर रात को वो सोने से पहले वो सूरह मुल्क पढ़ता है, रीड इट विद ट्रांसलेशन, आपको कुरान मजीद का जो भी पोर्शन हिफ्ज है ना, चाहे वो छोटी छोटी सूरतें आप चाहे ले लें, तीसवें पारे की सूरतें ले लें या कोई भी आयात ले लें, आपको टास्क मैं ये दे रहा हूँ, आपने ये आपका ये होमवर्क है कि आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो भी आयात आपको हिफ्ज हैं याद हैं उनको आप ट्रांसलेशन के साथ याद करें। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह असर कौलकुम अव जहरू भी, चाहे तुम अपनी आवाज़ या अपने जो भी तुम बातें करते हो ना, इनको चाहे छुप के बात करो किसी से, वह असर कौलकुम अव जहरू भी, यहाँ बुलंद आवाज़ से कहकर पुकारो, ठीक है, इन्नहु अलीमुन बिदाति सुदूर, अल्लाह ताला तो जो तुम्हारे दिलों में ऐसी बातें भी हैं जो तुमने अपनी ज़ुबान पे लेके आई नहीं हो, सुभान अल्लाह, तुमने अभी यानी ना तुमने हल्की आवाज़ में वो लफ्ज़ अदा किए हैं ना तुमने ऊंची आवाज़ में वो बातें कही हैं, अभी तुम्हारे दिल में है बात, अल्लाह ताला तो उन बातों तक से वाकिफ़ है, अल्लाहु अकबर। यानी ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये हम देखें ना, सुभान अल्लाह, कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है, यानी पूरा कुरान मजीद, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप पहले सफ़े से लेकर एंड तक जब आप पढ़ते हैं कवर टू कवर सरापा हिदायत है, लेकिन कुरान का इजाज़ एक ये भी है कि आप सिर्फ एक आयत को भी यानी अगर आपको क्लिक कर जाए ना, आपके दिल को लग जाए, वो आपके लिए और मेरी हिदायत के लिए काफ़ी, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, देयर वर फ्यू आयात विच रियली टर्न मी, कि मैंने जब वो आयात जब मैं समझ के पढ़ी ना, और यानी होता ये है कि आई लर्नड इस्लाम द हार्ड वे, ठीक है, यानी अल्लाह ताला कभी कभी बंदे को ना एक आयत है वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि यकीनन हम इनको छोटे अजाब में मुबतला करेंगे بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ آئیں. سو دا نیکسٹ ٹائم اف یو تھنک یو آر ان اے پرابلم، اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، اور اس پرابلم کی وجہ سے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ اکبر، ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ اے میرے بندے پلٹ آ. ویسے تو تو جب تو اچھے تیرے حالات تھے سو ٹو سے، تو تو مجھے بھولا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے، اگر آپ یعنی اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کی وہ پرابلم دور نہیں جا رہی، لیکن آپ کرتے کیا ہیں، اس پرابلم کی وجہ سے آپ ڈیلی آپ کی نمازیں بھی بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تم مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں. اگر آپ کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اور آپ اس دنیا سے یہ اسی حالات میں گزر جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بخشش ہی بخشش ہے. ناؤ اف یو پٹ دس تھنگ ان ون سینیریو، اگر ایک تو یہ سینیریو ہے. سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارا مال بھی دیا ہوا ہے، آپ جو بھی آپ کے مائنڈ میں ایک وش آتی ہے، ڈیزائر آتی ہے، وہ آپ کو پرووائڈ بھی کر دی جاتی ہے. اس سے کیا ہے، آپ کی نمازیں بھی ضائع جاتی جا رہی ہیں، آپ برے کاموں میں بھی انوالوڈ ہیں. اگر آپ اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، اف یو ڈو دی کیلکولیشن، اف یو کمپیر، یو نو میک اے کمپیریزن، تو کون سی حالت زیادہ بہتر ہے؟ یعنی آپ کی آخرت جو ہے کس سینیریو میں بچتی ہے؟ پہلی والی میں. تو پرابلم ہی ہوتی ہے، ہم نا اپیرنٹلی چیزوں کو نا جج کر رہے ہوتے ہیں، اپیرنٹلی ہم جج کر رہے ہوتے ہیں. سو گیٹنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کہ اللہ تعالیٰ تو انہو علیم بذات الصدور، اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز الا یعلم من خلق، کیا یعنی جو جس نے پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا؟ یعنی تم اپنا دماغ استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ تو اللہ یعلم، تو یہ جو ہے کچھ چیزیں تھیں آئی تھاٹ کہ آپ کے سامنے رکھوں، کہ یہ جو شرک ہے نا، شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں، ٹھیک ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو یوز اینی لنک ان بٹوین. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنا رابطہ جو ہے، یعنی اپنا جو کنیکشن ہے، اپنا لنک ہے، اسٹرانگ کریں. اور اس کے حوالے سے کچھ لوگ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں یار، یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ شرک جو کر رہے ہیں، زنا میں لوگ انوالوڈ ہیں، چوری اور یعنی واٹ اینڈ واٹ ناٹ، ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں تھی. تو اس میں سے چار ایسے لوگ تھے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے نام رکھے تھے، ان میں سے دو کے نام تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کم از کم آپ مجھے وہ تو بتائیں گے. ہو ور دوز پیپل؟ ایک تو شخص وہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آخری کلاس میں، ٹھیک ہے، زید بن عمر بن نوفیل تھے، اور سیکنڈ وہ بندے ہیں ورقہ ابن نوفل، جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ڈسکس کریں گے. دی ادر ٹو پیپل ور عبید اللہ بن جحش تھے، عثمان ابن حویرث تھے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ چار بندے تھے. اچھا، پہلے تین بندے جو ہیں نا، عثمان بن حویرث، عبید اللہ بن جحش اور ورقہ بن نوفل، ان کو حنیفین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حنفی وہ ہوتا ہے جو حنفی فقہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے، حنفی نہیں، حنیفین، کہ جو ایک ہی اللہ پہ اور یعنی دین ابراہیم پر یعنی ڈٹے ہوئے تھے، دے ور فالوئنگ دی دین آف ابراہیم علیہ السلام. تو یعنی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنی کوشش انہوں نے جاری رکھی ہوئی تھی، تو کرتے کرتے جو ہے دے یوز ٹو ٹریول، شام جاتے تھے، شام اٹ یوز ٹو بی کنسیڈرڈ ایز یو نو اے پلیس آف نالج، وہاں پہ راہب ہوا کرتے تھے، پریسٹ ہوا کرتے تھے، جو یعنی جن کے پاس نالج ہوا کرتا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت سلیمان فارسی بھی جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جب اپنے جو ہے اپنے شہر سے نکلے تھے تو وہ شام میں گئے تھے، پتہ کرتے کرتے کہ وہ جو رسول نے آنا ہے، آخری رسول نے آ رہا ہے، وہ کہاں پہ نمودار ہوں گے، کہاں پہ وہ جو ہے آئیں گے. تو شام جو ہے وہ مرکز تھا. تو دی فرسٹ تھری پیپل دے ونٹ ٹو شام، اور ایونچولی دے ایکسیپٹڈ یعنی کرسچینٹی، تو وہ عیسائیت انہوں نے قبول کر لی. عیسائیت اس وقت کچھ نہ کچھ اس میں ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ شرک انوالو نہیں تھا، لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے، دیور آن توحید دا پیپل. تو اس کے بعد کیا ہوا، لیکن زید بن عمر ہم نے دیکھا، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کرسچینٹی بھی جو ہے اپناؤں گا نہیں، میں دین ابراہیمی پر ہی رہوں گا. اور باقی تین بندوں نے تو جو بھی کیا وہ ان کا پرسنل معاملہ تھا، لیکن زید جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی زبان جو ہے آواز بلند کی کہ نہیں یار، جو تم لوگ کر رہے ہو، مکہ والوں کو یعنی ریٹیلیٹ کیا، جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، دس از ناٹ رائٹ. تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے जब भी आप किसी भी सोसाइटी के जो असर रसूख रखने वाले लोग हैं ना, मालदार लोग हैं, ठीक है, सो टू से जो चौधरी लोग हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट कोई भी बात बोलेंगे ना, तो दे वुडेंट बेयर दैट, वो नहीं जो है पसंद करेंगे आपकी बात सुनना। क्योंकि उसकी वजह यह है, जब मक्का की बात की जाए, मुशरिकीन मक्का की, मक्का एक ट्रेड हब थी, ठीक है, इट वाज अ सेंटर पॉइंट, वहां पे लोग आके जो है बिजनेस किया करते थे। वो कैसे कि साउथ, अगर हम मैप देखें ना, तो साउथ में यमन था, तो यमन से, अब यमन के साथ जो है वो समुंदर लगता था, तो नीचे से सारा सामान स्टॉक जो यमन वाले लोग थे ऊपर लेके आया करते थे मक्का तक, और जो ऊपर जो यानी जो जो यमन से सामान आया करता था, यानी इंडिया, इंडिया तो खैर नहीं था, हिंद से वहां से आता था, तो ये सामान ऊपर लेके जाया करते थे मक्का में जो है, दे यूज टू स्टॉप देयर, एंड फ्रॉम द नॉर्थ वहां से शाम, यानी शाम, अब ये कह लें कि इट वॉज अ गेट वे टूवर्ड्स यूरोप, वहां से फिर यूरोप आता है, तो वो जो नॉर्थ का सामान था वो नीचे लेके आया करते थे, तो फिर वो दे यूज टू ट्रेड। तो अब मक्का में क्यों आके ट्रेड किया करते थे, क्योंकि वहाँ के सब के जो भी वहाँ का जो पूरा खित्ता था ना, उनके बुत वहाँ पे जो है उन्होंने, आप ये कह लें सोटू से, उन्होंने होस्टेज करके रखे हुए थे। अच्छा यार, अगर तुमने हमारे, अब आप वो जो सूरह कुरैश में आता है ना, ली ईला फी कुरैश ईला फी रहलत शिता व सईफ, मक्का वाले ना, ये इनका काफिला जाया करता था, यानी नीचे से भी अपने यानी सामान गुड्स लेके आए ऊपर, और ऊपर से फिर नीचे लेके आए। हालांकि इट वाज नॉट एन इजी टास्क, व्हाई, बिकॉज ड्यूरिंग द लाइन जो उनका हाईवे था, वहाँ पे हाईवे रोबर्स भी हुआ करते थे, यानी चोर हुआ करते थे, उनको उनका काम ही ये था, उनका प्रोफेशन ये था कि कोई भी अगर काफिला जा रहा है, हमने माल उड़ाना है। मक्का वालों को वो हाथ नहीं लगाते थे, उनको पता अगर हमने जो है अगर इनको डिस्टर्ब किया ना, तो हमारे बुत हॉस्टेज रखे हुए हैं, तो फिर हम गड़बड़ हो जाएगी। तो सुभान अल्लाह, मक्का वालों को ये एक, आप ये समझ लें कि एक एडवांटेज था। अब मक्का वालों ने जब ये सुना कि ये जैद जो है ये कहता है कि नहीं, एक अल्लाह की इबादत करनी है, और ये बुत परस्ती, और तुम यानी गैरुल्लाह के नाम पे जो तुम ये जो जानवरों को ज़िबा कर रहे हो, ये गलत है। अगर ये बुत यहाँ से निकल गए तो हमारे पास कौन फिर आएगा, हमें कौन सेफ्टी प्रोवाइड करेगा? तो बाय डिफॉल्ट जैद बिन आमर को फिर जो है रिटेलिएशन जो है, ही फेस द रिटेलिएशन, और फिर उन्होंने जुल्म भी किया उनके ऊपर, उनको मारा जाता था। यहां तक कि जो उनके अंकल हैं उन्होंने जो है जैद पे जो है जुल्म किया। तो वरका की अगर बात की जाए, तो दीज यू नो ये आपस में दोस्त थे, वरका बिन नौफल और जैद बिन आमर बड़े अच्छे पक्के दोस्त थे। तो जैद जब फोत हो गए, यानी ही वॉज मर्डर्ड एक्चुअली, तो उसके बाद वरका इज़ दी ओनली वन इन मक्का, मक्का में वो, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रसूल कब आएंगे, और वो अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार रहे हैं कि उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली थी, तो अब जाहिर बात है उनका काम ये था कि अपना पढ़ रहे हैं, और ही वॉज सो लर्नड, उनको सिर्फ अरबिक में उबूर नहीं था, बल्कि उन्होंने इब्रानी जो हिब्रू है, ठीक है, ज्यूश लैंग्वेज, उनको यानी उन्होंने वो पढ़ी, और उसमें बाकायदा वो लिखना, यानी लिखना भी शुरू कर दिया। ही यूज टू राइट बुक्स इन हिब्रू। और अब सेकेंडली आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि वरका इबन नौफल ही वॉज द कज़न ऑफ हज़रत खदीजा, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बात की जाए, तो दीज टू वर कज़न्स, वरका इबन नौफल इबन असद, वरका के फादर नौफल थे और नौफल के फादर असद थे, यानी द ग्रैंड फादर ऑफ वरका वाज असद। सिमिलरली हज़रत खदीजा की अगर बात की जाए, खदीजा बिनत खुवैलिद बिनत असद, यानी दोनों के जो ग्रैंड फादर थे ना, वो एक ही थे, तो ये कज़न्स कहलाए, यानी कहलाए जाते हैं। लेकिन चूंकि जो वरका हैं, इनके फादर नौफल, इनके फादर का नाम नौफल था और इनके फादर का नाम खुवैलिद था, यानी ये आप समझ लें कि सबसे बड़े बेटे थे नौफल, और जो खुवैलिद थे ना, ये सबसे छोटे बेटे थे, तो इनमें बड़ा एज डिफरेंस था। तो हज़रत खदीजा की एज में और वरका की भी एज में तकरीबन 31 साल का फ़र्क था अप्रॉक्सीमेटली। तो ही बेसिकली यानी ज़ात आप समझ लें कि ही वॉज कंसिडर्ड एज अंकल बेसिकली, ठीक है, उनके अंकल कंसिडर किए जाते थे, राइट। हज़रत खदीजा के जो फादर हैं खुवैलिद, मक्का में पहले कुछ जंगें हुई थी जिनको फिजार कहते हैं, द वॉर्स ऑफ फिजार, जहाँ पे बहुत सारे जो मक्का वाले थे यू नो दे लॉस्ट देयर लाइव्स, और जिसकी वजह से हज़रत खतीजा को बहुत सारी जो है जो वेल्थ थी उनको विरासत में मिली, एंड शी वॉज़ वेरी वेरी रिच। मक्का की यानी अमीर तरीन ख्वातीन में उनका जो है लोगों में उनका, बल्कि सिर्फ ख्वातीन में नहीं लोगों में मर्दों में भी उनका शुमार किया जाता था। और वरका इबन नौफल ये भी कुरैश में से हैं, और आप समझ लें कि कुरैश में से भी इनकी लीनियज है आमिर इबन रुहई, ये एक लीनियज है, ये यानी उस उनके डिसेंडेंट्स में थे में से थे। और आमिर इबन रुहई उनसे अगर नीचे आएँ तो बनु अदी इनका कबीला था, इनका क्लाइंट था, और इसके साथ साथ ही अपने कबीले के ना सबसे बड़े थे, ठीक है। ही वॉज कंसिडर्ड एज अ नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज क्लैन ऑफ हिज ट्राइब। और हज़रत खतीजा की भी अगर बात की जाए, हज़रत खतीजा भी शी वॉज़ यू नो वेरी गुड इन अखलाक, और शी वॉज़ अ वेरी पायस वुमेन, और उन्होंने भी कभी जो है दौरे जाहिलियत में कभी शिर्क और कभी इस किस्म की जो है काम नहीं किए थे। असल में था क्या, चूँकि ये एक ही कबीले से थे तो एक्सपेक्ट ये किया जाता था, इन कॉन्टेक्स्ट अगर बात की जाए, पीपल वर एक्सपेक्टिंग के वरका की शादी हज़रत खतीजा से होगी। लेकिन चूँकि वरका इबन नौफल ने अब ये कह लें कि वो राहिब बन चुके थे, ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, तो उन्होंने ना दुनिया को छोड़ ही दिया था एक एक हिसाब से, यानी ही यूज़ टू ईट ओनली वन मील इन अ डे, सिर्फ एक दफ़ा का खाना खाया। सो मच सो ही लेफ्ट हिज फैमिली, जो भी इनको जो विरासत में पैसे आए थे ना, माल आया था, वो भी इन्होंने छोड़ दिया, कहते कि मुझे माल की भी ज़रूरत नहीं है, और सबसे अलग हो गए। बड़ी सादा ज़िंदगी इन्होंने गुजारी, और अकेले ही अपने लिखो किताबत में अपनी इबादत में वो मसरूफ़ रहते थे। इसीलिए वरका इबन नौफल को रिटेलिएशन फेस नहीं करनी पड़ी, वो बस अपने काम से काम रखते थे। अच्छा, हुआ क्या कि चूंकि ये पढ़े लिखे थे, और ही वाज अ ड्रीम इंटरप्रेटर एज वेल, लोग जो हैं इनसे ख्वाबों की ताबीर पूछा करने के लिए आया करते थे। और हज़रत खतीजा ने एक बार उनको ख्वाब आया, तो वो पूछने के लिए जब वरका के पास आई, कहती हैं कि आई सॉ अ ड्रीम, मैंने एक ड्रीम देखा है, ख्वाब देखा है, और मैं देखती क्या हूँ कि द सन इज़ सेटिंग इन माई हाउस, कि जो सूरज है गुरूब हो रहा है मेरे घर के ऊपर, इसका आप क्या ताबीर बताते हैं। तो वरका कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि यू विल बी मैरिड टू अ वेरी नोबल पर्सन, एक बहुत ही अच्छे आदमी के साथ आपकी शादी होगी, या आपकी शादी किसी नबी के साथ होगी। तो ये उन्होंने इंटरप्रिटेशन बताई थी उनके ख्वाब की। और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात की जाए ना, अभी उनको नबूवत नहीं मिली, लेकिन पहले से ही इतने मिरेकल्स हुए थे उनके साथ कि पीपल यूज टू थिंक दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज़ समबडी स्पेशल, कि ये जो है ना ये कोई आम आदमी नहीं है। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, तो अबू लहब ने, जो कि उनके चचा हैं, एंड ही वॉज अ नेबर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ वेल, तो उन्होंने यू नो ही वेंट एंड ही स्लॉटर्ड शीप्स और सबको बांटी। क्यों? क्योंकि नरेशन बताती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, यू नो पीपल सो अ लाइट कमिंग आउट ऑफ द वूम ऑफ आमिना, तो यानी पीपल वर एक्सपीरियंसिंग द मिरेकल्स ऑलरेडी। और इसी तरह वरका इबन नौफल भी जो है, यानी चूंकि वो पढ़ते भी थे, उनके किताबों में कोई ना कोई जो है आप प्रोफेसीज जो है होंगी, ही यूज़ टू थिंक एज वेल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही इज़ समबडी स्पेशल। एक दफ़ा हुआ क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ, ही वाज अ यंग बॉय, तकरीबन उनकी उम्र होगी 12-13-14 साल की उम्र के होंगे, वो एक बार जो है ना अबू तालिब के साथ गए शाम में किसी बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा, वो जा रहे हैं तो देखते क्या हैं कि एक राहिब, वहाँ का जो लोकल राहिब है, वो इनको ना फॉलो कर रहा था, अबू तालिब को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जाते जाते पूछता ये है कि ये मोहम्मद, ये जो लड़का, यानी हु इज़ दिस गाय, ये लड़का कौन है? तो अबू तालिब कहते हैं, ही इज़ माई सन, आना अभी, मैं इनके फादर, मैं इस लड़के का यानी फादर हूँ। तो वो प्रीस्ट कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसके फादर नहीं हो। तो अबू तालिब जो है बड़े सरप्राइज हुए, क्या मामला चल रहा है, क्या माजरा है? तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द इशू, क्या प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं कि जब से तुम लोग चल रहे हो ना, कोई ऐसा दरख्त नहीं है, कोई ऐसा पत्थर नहीं है जिनसे आप गुजरे हैं या ये लड़का गुजरा है, बल्कि उन्होंने, इन दरख्त ने और पत्थरों ने सजदू लहू, सजदा किया इस लड़के को। तो अबू तालिब पहले ही ही वॉज ऑलरेडी इन शॉक, और कहते हैं ये कैसी बात कर रहा है। और फिर पूछता है राहिब, पूछता है कि तुम इस लड़के को कहाँ लेके जा रहे हो। अच्छा, उसको ये पता कैसे चला? उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैग पे ना खातिम नबूवा है, द सील ऑफ द प्रॉफिट्स, ये देख ली थी। अबू तालिब को तो नहीं पता था। अब जिन बंदों, यानी जो द पीपल हु वर लर्न इट, दे न्यू के दे नो देर इज समथिंग स्पेशल गोइंग ऑन। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको कहाँ लेके जा रहे हो? कहते हैं कि मैं इसको बाजार में लेके जा रहा हूँ, हम जिस काम के लिए आए वो काम करेंगे, फिर वापस हम अपने जो है अपने जो है मुल्क चले जाएंगे, अपने शहर चले जाएंगे। तो कहते हैं आगे बाजार में मत जाना, अगर तो किसी को पता चल गया कि ये लड़का यहाँ पे आया है तो वो बंदे इसको नुकसान पहुँचाएंगे, तो बेहतर यही कि तुम इसको लेके वापस चले जाओ। क्या मतलब है इसका? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, यू शुड नो द बैकग्राउंड, बहुत सारे ऐसे लोग थे वो नबी का, रसूल का इंतज़ार कर रहे थे। ख़ासकर अगर ज्यूज़ की बात की जाए ना, दे यूज़ यू नो दे वर वेटिंग फॉर द प्रॉफिट, लेकिन उनके माइंड में ये था कि जो नबी आएगा ना वो हमारे कबीले में से होगा, ही वुड बी अ ज्यू। अब उनको अगर पता चले कि ये अरब में से आया है, बनी इसराइल में से नहीं है, तो डेफिनेटली दे वुड हार्म। उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को जो है उनको भी अपनी तरफ से उन्होंने जो है उन्होंने जुल्म किया उनके ऊपर। तो फिर यही सुनना था, तो अबू तालिब जो है वहाँ से वापस हो गए, यूटर्न लिया और जो है वापस चले गए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, यानी शाम नहीं गए, राइट। अच्छा, वो एक नरेशन के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया ना, हज़रत खतीजा ने जैसे ख्वाब देखा था, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी एक ख्वाब देखा था। ख्वाब देखती क्या है कि थ्री मून्स आर सेटिंग डाउन इन हर हाउस। उन्होंने तो सूरज देखा था, खतीजा ने, तो इन्होंने तीन चांद को देखे कि उनके घर में जो है वो उतर रहे हैं, गुरूब हो रहे हैं, गुरूब ही कहेंगे गालिबन। तो उन जब वो अपने फादर के पास गई, अबू बकर के पास गई, तो उन्होंने पूछा कि फादर आई हैव सीन सच अ ड्रीम, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? तो कहते हैं कि तुम्हारे घर में तीन नेक बंदों, यानी तीन नेक बंदों को दफनाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। और वही हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हुए, ही वॉज बरीड इन हर हाउस, बेसिकली उनके जो रूम है। और यू नो दैट वॉज द फर्स्ट मून। और फिर जब अबू बकर फोत हुए, जब उनको दफनाया गया, ही वॉज अ सेकेंड मून। एंड हु वॉज अ थर्ड मून? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। सो दिस वॉज द ड्रीम ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। अच्छा, राइट। उसके बाद हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ही इज़ अ यंग पर्सन नाउ, और ड्यूरिंग दैट टाइम वो जो है ही वॉज़ अ शेपर्ड, बकरियाँ चराए करते थे। और नबी करीम सल्लम कहते हैं कि मैं कुछ पैनीज के लिए, कुछ रुपयों के लिए मैं लोगों की बकरियाँ चराया करता था। दिस वॉज आवर प्रॉफिट। और नरेशन बताती हैं कि कोई नबी नहीं आया मगर ही वॉज अ शेपर्ड एट सम पॉइंट इन टाइम, कि किसी न किसी वक्त में उन्होंने जो है ये काम किया है। अच्छा, अब वो जो है नबी करीम सल्लम जो है ही इज़ अ यंग पर्सन नाउ, और हज़रत खतीजा जो है शी इज़ अ वेरी वेल्दी वुमेन, और वो जो है जाहिर बात है ख़ातून हैं, उनका भी जो है बिज़नेस कैरावैन जाया करते थे, उनका काफ़िला यानी सामान, उनका माल जो है लोग लेके जाया करते थे। चूँकि वो ख़ातून थी तो जिस बंदे को भी वो अपना सामान देती ना, तो वो उसमें ना हेरे फेरे करता, तो उनको कोई एक यानी ऐसा अच्छा बंदा, ईमानदार बंदा मिला ही नहीं कि जो है पूरे यानी सही तरीके से पूरा हिसाब किताब करके जो है उनको उनका प्रॉफिट दे और सारा मामलात करे। तो लोगों ने बताया कि मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही इज़ अ वेरी पायस पर्सन, यानी उनको सादिक अमीन कहा जाता है। तो हज़रत खदीजा ने अपना माल एक दफ़ा जो है ना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, कि उनका बंदा था मैसरा, हज़रत खदीजा का एम्प्लॉई आप कह लें, तो वो जो है उनके थ्रू कहा कि आप सामान लेके जाएं और फॉलो करते रहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ इज़ हिज कैरेक्टर, और इनका यानी मामलात कैसे हैं, लेन देन कैसा है। तो मैसरा भी जब जर्नी में जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो देखते क्या हैं, इनको भी बड़े अजाइब जो है नज़र आए, बड़े जो है इन्होंने मिरेकल्स देखे। देखते क्या आए कि जब से ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं, बोलते हैं हमारे पूरे सफ़र में मैं देखता क्या हूँ, हम तो धूप में जल रहे हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमेशा हमने देखा एक बादल है जो कि साया करते हुए जो है हमेशा उनके ऊपर रहा, सुभान अल्लाह। और फिर देखते क्या हैं कि जाते हैं, शाम में जाते हैं, और वहाँ पे ना जाहिर बात है थोड़ा सा थकावट हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने एक दरख्त देखा और उसके साए में ना वो थोड़ा सा ही टुक अ नैप। जब वो नैप ले रहे थे द ट्री हैड शेडिड हिम, ठीक है, दरख्त ने अपना शेड किया हुआ है। आप जब नैप ले रहे हैं, अब अगर सूरज की अगर आप देखें ना कि सूरज मूव कर रहा है, अब जाहिर बात है अगर गर्मी आ रही है उनके ऊपर तपिश आ रही है, तो दरख्त ने इट एक्सटेंडेड इट्स शेड, उसने जो है ना अपना शेड लंबा कर दिया ताकि उन पर धूप ना आए। मैसरा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, बोलते हैं ये क्या हो, यानी हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये क्या हो रहा है, हो सकता है कि कोई हवा चल रही है इसलिए उनके ऊपर शेड आ रहा है। तो ये अभी वो सोच ही रहे हैं, वो नबी करीम सल्लम को देख ही रहे हैं कि दोबारा एक और नया राहिब आता है राहिब आता है और नबी करीम सल्लम सो रहे हैं और पूछते हैं कि हु इज़ दैट पर्सन, वो बंदा कौन है। तो मैसरा कहता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मिन अर्द अलहरम, कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, इनके फादर का नाम अब्दुल्ला है और अर्द अलहरम यानी ये हरम से हैं, मक्का से हैं। तो राहिब कहता है कि ओनली प्रॉफिट्स टेक शेल्टर इन दैट ट्री, कि सिर्फ अम्बिया ही हैं जो यानी आराम करते हैं उस दरख्त के नीचे। ये ऑलरेडी बड़ा सरप्राइज था कि यार क्या मामला चल रहे हैं, जब ये राहिब ने बात की और राहिब अपने काम पे चल दिया, तो ये सोच में ही पड़े हुए हैं कि यार हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। आपको पता हो कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वाज अ यंग बॉय, जब उनको हजरत यानी आमिना ने जब छोड़ दिया था कि जो है ना यानी वो क्या उसको कहते हैं सहरा में अपने बच्चों की परवरिश के लिए, ताकि उनकी लैंग्वेज जो है ना प्योर रहे अरबिक, वो अपने बच्चों को ना छोड़ दिया करते थे सहरा में कि वहाँ पे यानी उनको हवा ताज़ी मिलेगी, उनकी लैंग्वेज जो है प्योर रहेगी। तो वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मामला हुआ था, जब उनका दिल जो है उनकी जो है वो काट के दिल जो है वो धोया गया था, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सारा वो जो माजरा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक वो अभी समझ लें कि कश्मकश थी कि यानी समथिंग इज़ गोइंग ऑन, यू नो बैक एंड पे कुछ ना कुछ चल रहा है। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, आई एम कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये वरका बिन नौफल की, एक बार जब वो जैद बिन वो यानी अब वो अबू बकर जो है काबा के पास आए और देखते क्या हैं कि जैद बिन अमर जो है ना काबा के साथ टेक लगाए हुए हैं, और उमैया बिन सल्त एक शायर हैं, वो जो है गुज़रते गुज़रते पूछते हैं ए जैद जिसको तुम ढूंढ रहे थे, जिसकी तुम तलाश में हो, क्या तुम्हें वो मिल गई वो चीज़, यानी तुम दीन को ढूंढ रहे थे ना, तुम दे रहे थे कि यानी व्हाट इज़ द प्योर रिलीजन, तुम हक को ढूंढ रहे थे। तो जब मैं ये नरेशन पढ़ रहा था ना, आई थॉट कि देखें सुबहान अल्लाह, नॉट ओनली जैद वॉज डूइंग इट इन ऑन अ पर्सनल लेवल, सब लोगों को पता था कि देखो ये बंदा अपने काम का छोड़ के हक की तलाश में है। अगर ये सफ़र कर रहा है अपनी अपनी इसने जो है ज़िंदगी इतनी आप समझ लें कि स्ट्रेस ले रहा है, स्ट्रेस किस लिए ले रहा है, ताकि इसको हक का पता चले, और उस हक की तलाश में ही इज़ ट्रैवलिंग टू शाम, शाम जा रहा है और बाकी जगहों में जा रहा है जस्ट टू नो व्हाट इज़ द रियल दीन ऑफ इब्राहिम, कि दीन यानी इब्राहिम का दीन क्या है, ताकि उनको और नॉलेज मिले, ताकि वो उसको फॉलो करें, उनको पता चले कि अल्लाह ताला की इबादत कैसे करनी है, व्हाट इज़ द राइट वे टू यू नो टू वर्शिप अल्लाह सुबहान व तआला। तो जैद कहते हैं कि अभी तक तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। तो उमैया कहते हैं कि ये याद रखना मेरी बात, तुम याद रखना कि जो आने वाले रसूल है नबी है ना, वो या तो तुम्हारे कबीले से होंगे या वो हमारे कबीले से होंगे। अबू बकर भी वहाँ पे ये बातें सुन रहे थे, और उस वक्त अबू बकर की उम्र तकरीबन आप समझ लें कि 18-19, यानी ही वॉज अ टीनेजर एट दैट टाइम। तो जब भी उन्होंने बात सुनी ना, तो वो जो है गए वरका इबन नौफल के पास। तो वरका इबन नौफल ही वॉज कंसिडर्ड अ स्कॉलर एट दैट टाइम, लोग मानते थे कि यार ही इज़ अ स्कॉलर, इनको जो है इल्म है। और जब वो गए और सारा माजरा बताया कि ये जो है उमैया ने बात बताई है ये जैद को, तो व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन, तो वरका भी इस चीज़ को अफर्म करते हैं कि ऐ भतीजे कि बिल्कुल ऐसे ही है, हमें भी ये उम्मीद है कि जो आने वाला नबी है वो इसी खित्ते से होगा। और अबू बकर बताते हैं ही इज़ अ विटनेस टू इट, कहते हैं कि जब मैं अमूमन वरका इबन नौफल को देखा करता था ना, अमूमन वरका जो है ना अपनी नज़रों को आसमान के साथ जुमाए रखते थे, कि एज इफ जब आप देखें ना कि कभी बंदे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना और उसको कोई अल्फाज ना मिल रहे हों, तो वो ना आसमान की तरफ देखता है, यानी ही इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग, سبحان اللہ. تو ورقہ ابن نوفل جو ہے نا, ہی یوز ٹو سی ایٹ دا اسکائی, ہی یوز ٹو یو نو گلیئر ایٹ دا اسکائی, اور ابو بکر بتاتے ہیں کہ ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی رنج و غم کی وجہ سے کہ ایز اف سم تھنگ از مسنگ, وہ کسی چیز کی تلاش میں ہیں. تو یعنی یہاں اس نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر وٹنس دے رہے ہیں کہ ورقہ ابن نوفل ہی واز آلسو سو اسٹریسڈ کہ ان کی ساری زندگی وہ یہی دیکھتے رہے, انتظار کرتے رہے کہ حق کب آئے گا. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی پوری جو ایک یعنی جو نارمل لائف سٹائل ہوتا ہے بندے کا اس کو چھوڑ کے, یعنی حالانکہ ان کو کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے, تم نے یہ غلط کام نہیں کرنا یا تم نے یہ کام کرنے نہیں, بٹ اسٹل دیز پیپل آر ریزسٹنگ دا بیڈ تھنگس. کو کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ سب کچھ غلط ہے, ہم یہ نہیں کریں گے, دس از ناٹ الاؤڈ. جس بندے کی عقل جو ہے سلیم ہوتی ہے نا, پولیوٹیڈ نہیں ہوتی, کرپٹیڈ نہیں ہوتی, تو وہ بندے واقعی سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, اولو الالباب میں سے ہوتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ یقیناً آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا, رات کے اور دن کے آنے جانے میں یہ نشانیاں ہیں, یہ نشانیاں, دیز آر دا سائنس, لیکن وہ کون لوگ ہیں, لآیات لأولی الالباب, جو عقل رکھتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو صرف اپنی 9 to 5 کی روٹین پہ فوکس نہیں کرتے. بس یہ نہیں کہ صبح اٹھے بس اپنی بائک سٹارٹ کی, کالج چلے گئے, ٹھیک ہے, اپنا سارا اسکول کا کام کر کے, کالج کا کام کر کے, جاب کر کے واپس آئے, تھوڑا سا نیپ لیا یا پھر جو ہے اپنا ہوم ورک کیا. ان کی یہ 9 to 5 ان کی ساری زندگی ایسے نہیں چل رہی ہوتی, نہیں, دے تھنک آؤٹ آف دا باکس. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان اور یہ جو زمین یہ جو بنے ہیں کتنا پرفیکٹ نظام ہے, اور یہ لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے یعنی ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ آپ نے یہ باطل پیدا نہیں کیا, دیر از اے پرپز بیہائنڈ اٹ. دا پرابلم از کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کھول کر ساری چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں لیکن ہم پھر بھی ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے. اینڈ اف یو لک ایٹ دیز پیپل دے ہیڈ نتھنگ ٹو فالو, ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ہے, کوئی کتاب ان کو نہیں دی گئی, لیکن سبحان اللہ انہوں نے پھر بھی, وہی بات آتی ہے نا جو نفس امارہ ہے نا اس کو قابو کرنا پڑتا ہے. نفس امارہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف ہی اکساتا ہے کہ اے بندے تو یہ بھی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ نفس امارہ کا کام ہے. یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے نفس امارہ کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں. نفس یعنی یہ ہم تو اپنے نفس کے کنٹرول میں نا, ہمارا نفس جو کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندے صبح اٹھ, حی علی الفلاح, روزانہ صبح آواز آتی ہے حی علی الفلاح, اور اس کا شاید ہی کوئی مسلمان ہو جس کو اس کا مطلب نہ آتا ہو. اور ہر بندہ کامیابی کے پیچھے اس نے دوڑ لگائی ہوئی ہے, اور ہر بندے کا اپنا اپنا کانسیپٹ ہے کامیابی کا. کوئی بندہ سمجھتا ہے مجھے فلاں کمپنی میں جاب مل جائے گی تو آئی بی کنسیڈرڈ ایز سکسیزفل, کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا گھر بنا لیا میں سکسیزفل ہوں گا. یعنی ہمارے اپنے اپنے ہم نے نا اسٹینڈرڈس مینٹین کیے ہوئے ہیں, حالانکہ اللہ تعالی یعنی کی طرف سے جو آواز آتی ہے حی علی الفلاح, اف یو وانٹ سکسیز یو ہیو ٹو کم ہیئر, تمہیں ادھر آنا ہے, لیکن ہمیں یقین نہیں آتا. دیز پیپل دے ہیڈ اے بلیو, دے بلیوڈ ان دیٹ کہ یا اللہ ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں, اب ہم آپ کی طرف سے یعنی ہم منتظر ہیں کہ آپ گائیڈنس دیں گے تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی فالو کریں گے. تو دس واز دا اسٹیٹس آف ورقہ بن نوفل. تو ہوتا یہ کہ پھر بات آگے بڑھتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کے چچا ہیں عباس رضی اللہ عنہ, ابو طالب اور حمزہ, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, یہ تینوں جاتے ہیں پرپوزل لینے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا. اور یہاں پہ عامر ابن اسد جو کہ ان کے چچا ہی ہیں حضرت خدیجہ کے, وہ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور شادی جو کنڈکٹ کرتے ہیں وہ ورقہ ابن نوفل ہیں, وہ ان دونوں کی شادی کنڈکٹ کرتے ہیں. ناؤ دے آر میرڈ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی شادی ہو جاتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے, اور 500 درہم جو ہے مہر جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا شی سیز اباؤٹ ورقہ ابن نوفل, وکان امرؤا یتنصر فی الجاہلیہ, ورقہ ابن نوفل ऐसे आदमी थे यतनसर जो कि क्रिश्चियन बन गए फिल जाहिलिया, यानी इन द जाहिलिया डेज, ठीक है, जाहिलियत के दौर में। वकान यक्तुबुल किताब अल इब्रानिया, और वो किताब लिखा करते थे बिल इब्रानिया, हिब्रू लैंग्वेज में। फयक्तुबु मिन अल इंजील बिल इब्रानिया, और सुभान अल्लाह वो जो इंजील थी उस वक्त की उसको हिब्रू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया करते थे। माशा अल्लाह अन यक्तुब, जितना अल्लाह ताला ने चाहा वो उतने उस हिसाब से उसको हिब्रू लैंग्वेज में लिखा करते थे। तो ही वॉज अ वेरी लिटरेट पर्सन। और फिर कहती हैं वकान शेखन कबीरन वक़द आमियन, कि वो शेख के दो मतलब होते हैं, एक तो एक स्कॉलर के लिए भी शेख इस्तेमाल किया जाता है, और बुज़ुर्ग के लिए भी जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनके लिए भी शेख इस्तेमाल किया जाता है। वकान शेखन कबीरन, ही वॉज़ एन ओल्ड पर्सन, और वक़द आमियन एंड ही बिकेम ब्लाइंड, जो है उम्र की वजह से वो नबीना हो चुके थे। और फिर जो है जो एक मारूफ नरेशन है, मशहूर नरेशन है, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही आई थी और वो भागे भागे जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए थे, तो फिर उन्होंने जब तसल्ली दी और फिर कहा कि अच्छा ये मामला जो है ना हमारी जो रहनुमाई कर सकेंगे ना, लेट अस गो टू वर्का इब्न नौफल। तो वहाँ पे जो है नरेशन जो है एक मशहूर वाक़ है, तो वो मैं वाक़ आपके सामने रखना चाहूँगा। तो नरेशन ये है कि हज़रत खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आती हैं वर्का इब्न नौफल के पास और कहती हैं फ़क़ालत लहा खदीजा इब्न अम्मी ओ सन ऑफ माय अंकल इस्मा मिन इब्न अखीक, अपने भतीजे से बात सुने। इब्न अखीक ये एक अरबों का एक रवाज था, बात करने का, किसी को एड्रेस करवाने का। इब्न अखीक, अपने भाई के बेटे की बात तो सुन लें आप। तो फिर वहाँ से नरेशन स्टार्ट होती है, सही बुखारी में नरेशन है। तो वरका कहते हैं यबन अखी मादा तरा, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ सन ऑफ माय ब्रदर, व्हाट डिड यू सी, तुमने देखा क्या है। और आपको पता होगा, मैंने बताया ना कि वो ख्वाबों की ताबीर भी किया करते थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा क्या है, कहीं हो सकता है तुमने ऐसा कोई ख्वाब देख लिया हो। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखबरहु रसूलुल्लाह खबर मा रआ, जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपीरियंस किया था ना गारे हिरा में, वो एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं। तो फिर वरका जो है जवाब देते हैं वल्लदी नफ्सी बियदी, कि उस ज़ात की कसम कि जिसके हाथ में मेरी जान है, इन्नका लनबीयू, कि यकीनन आप अल्लाह के नबी हैं, वहादिही उम्मतक, और ये आपकी उम्मत है। और फिर कहते हैं वलकद जाअक नामूस अल अकबर अल्लज़ी जाअ मूसा, यकीनन आपके पास नामूस आए हैं। नामूस अकबर, नामूस कहते हैं द बेरर ऑफ सीक्रेट्स, जो सीक्रेट्स जिसके पास होते हैं, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। आपके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए हैं, और ये वही जिब्रील हैं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे। एकदम ही पहचान लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि यानी मूसा का नाम क्यों लिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा रिसेंबल करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शरीयत दी गई थी और मूसा अलैहिस्सलाम को भी शरीयत दी गई थी, और ईसा अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत लेके नहीं आए थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को ही फॉलो कर रहे थे। हालांकि वो खुद क्रिश्चियन हैं, लेकिन उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का रेफरेंस दिया है। तो कहते हैं कि आपके पास वही जिब्रील आए हैं जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हिच ही सेज वेरी अमेजिंग, कहते हैं व इन्ना कौमुका सयुकज़्ज़िबूनक, ए मोहम्मद आप देखेंगे कि सयुकज़्ज़िबूनक, सा आता है अनकरीब, ठीक है, अनकरीब आपको आपकी कौम झुटलाएगी, वयुज़ूनक और आपको अज़ियत पहुँचाएगी, वयुख़रिजूनक और आपको निकाल देगी आपके शहर से, वयुक़ातिलूनक और आपके साथ किताल करेगी, आपके साथ लड़ाई करेगी। अच्छा, अब ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं और वरका कह रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वॉज इन अ शॉक, कहते हैं वक़्त तअज्जब रसूलुल्लाह, यानी इतना ताज्जुब किया अल्लाह के नबी ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो भी मामला हुआ था हज़रत खदीजा के साथ जो है जब डिस्क्लोज किया, उनको बताया, तो हज़रत खदीजा ने क्या बताया था कि ला यख़्ज़ीक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको यानी बेइज्जत नहीं करेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप बेवाओं का ख्याल रखते हैं, आप बच्चों की कफालत करते हैं, आप चैरिटी करते हैं, आप जो कमज़ोर हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। हज़रत खदीजा तो उनको दिलासा दे रही हैं कि यानी आपके जो सोसाइटी वाले हैं आपको सपोर्ट करेंगे। नाउ हियर वरका इब्न नौफल ही सेइंग योर पीपल विल रिजेक्ट यू, आपकी कौम ही आपको निकाल देगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी पास्ट रिकॉर्ड था, पहले अगर देखा जाए यानी 40 साल में उनको नबूवत मिली, उससे पहले जितने भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, किसी एक बंदे के साथ भी उनकी लड़ाई तो दूर की बात, कभी उनका झगड़ा नहीं हुआ, कभी यानी बुरी बात ही दूसरे से शेयर नहीं की। और लोग इतनी रिस्पेक्ट करते थे, यहाँ तक कि हर बंदा अस्सादिक अल अमीन, सिर्फ सादिक अमीन नहीं, अस्सादिक, अस्सादिक का मतलब होता है कि यानी सबसे ज्यादा सच्चा, सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा यानी अमानतदार। तो उनका पास रिकॉर्ड ये है, और यानी वो आप समझ लें कि ही इज कंसिडर्ड एज ए हीरो ऑफ द सोसाइटी। अब ये जब बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, ही इज अटली शॉक्ड। वो कहते हैं कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कंटिन्यूज, ही सेज फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतअज्जिबन, यानी ताज्जुब की हालत में कहते हैं, औ मुखरिजीहुम, ए वरका मेरी कौम मुझे निकाल देगी मक्का से, हाउ इज़ इट पॉसिबल, यानी समझ में आने वाली बात ही नहीं है। वो तो एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि यार मैंने आप समझ लें कि मैंने ग्राउंड बिल्ड कर दी हुई है, लोग तो मुझे बड़ा सच्चा कहते हैं, अब जाहिर ही बात है मैं कोई भी बात यानी कहूँगा करूँगा तो मेरे जो सोसाइटी वाले हैं वो तो उसी वक्त ही लब्बाई कह देंगे। और आपको याद होगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि बस अब आपने दावत का काम शुरू करना है, अभी उन्होंने खुलम खुला दावत का काम शुरू नहीं किया था। वॉट हैपेंड, वॉट ही डिड वॉज, अरबों में तरीक़ेकार ही होता था, जब भी कोई इमरजेंसी होती थी ना, कोई लोग यानी बाहर कबीले से, कोई यानी बाहर से अटैक करने के लिए आते थे, तो वो किया ये करते थे यानी शहर वाले कि कोई एक यानी बड़ी सी चोटी में खड़े होके ना, पहाड़ पे खड़े होके आवाज़ लगाते थे ऊंची ऊंची कि ख़तरे की यानी ख़तरा आने वाला है, ठीक है। तो लोग जब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया, वो पहाड़ के ऊपर खड़े हो गए और ऊंची ऊंची आवाज़ लगाने लगे, और ये सुबह सुबह आवाज़ लगाए करते थे फजर के टाइम पे। तो सारे जब लोग जमा हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मन कौम है और वो अभी तुम्हारी तरफ आई जाती है तुम पर अटैक करने के लिए, क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो सब ने एक आवाज़ में कहा, क्यों नहीं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप हमेशा सच्ची बात कहेंगे। यू नो द नेक्स्ट थिंग विच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुफ्लिहून, तुम फलाह पा जाओगे। जब उन्होंने ये बात कही ना तो अबू लहब और अबू जहल उन्होंने सर पकड़ लिए, तूने हमें इस चीज़ के लिए उठाया, तूने हमें इस चीज़ के लिए बुलाया। तो यानी इन रियलिटी यही मामला हुआ था। तो वरका कहते हैं, कौल वरका नाम, ऐसा ही होगा, आपकी कौम आपको निकाल देगी। लम यति रजुलुन कत बिमिथलि मा जित बिही इल्ला उदिया, बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं, कहते हैं कि कभी भी कोई शख्स नहीं आया मगर जो तुम पैगाम लेके आए हो ना, कोई भी शख्स जो ये पैगाम लेके आए ना, उसको उसकी कौम ने उसके ऊपर जुल्म ही किया है, उसको रिटेलिएट ही किया है। इट्स नॉट अबाउट यू मोहम्मद, इट्स अबाउट द मैसेज विच यू आर हैविंग। जो तुम मैसेज लेके आए हो ना, लोगों को ये मैसेज नहीं पसंद। और ये बात समझ में भी आती है, मिसाल के तौर पे अगर छोटी एग्जांपल से देखा जाए ना, अगर एक बंदा किसी बच्चे को भी रोक रहा होना कि बेटा आप गलत कर रहे हो, और बच्चे को आपने एक दफ़ा समझाया, बच्चे ने बात नहीं मानी, दूसरी दफ़ा समझाया, तीसरी दफ़ा समझाया, बच्चे के अंदर जितनी कैपेसिटी है ना, वो अंदर ही अंदर जो है ना आग बगोला हो रहा था ऐसे करके, ठीक, उसके आपको चेहरे के एक्सप्रेशन से नज़र आ जाएगा कि यार बच्चे को कैसा फील आ रहा है, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। अच्छा, फिर होता क्या, आपको पता कैसे चल जाता है, बच्चे के हाथ में कोई भी खिलौना होगा, कोई भी चीज़ होगी ना, ग्लास उठा के ज़मीन पर मारेगा, ये लो फिर। एक बच्चे के ऊपर जब आप उसको डांट रहे होते हैं, जब उसको अच्छी बात कहते हैं ना, वो उसके अंदर जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से रिटेलिएट करता है। तो इसी तरह जब आप ऐसे लोगों को कहेंगे जो आपकी पूरी सोसाइटी के फाइनेंस को कंट्रोल करती है, और अगर आप उसको कहेंगे सुने सूद लेना देना हराम है, अल्लाह ताला ने सख्त मना किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ए ईमान वालो, ए ईमान के दावेदारो, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो, और जो कुछ तुमने रिबा का लेन देन किया है, सूद का लेन देन किया है, ठीक है, व्हाट हैपेंड हैपेंड, ऑल राइट, लेकिन अब से वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, लेकिन अब से तो कम अज़ कम स्टॉप कर लो उस चीज़ को। तुम्हें अब पता चल गया है कि सूद हराम है, हराम है तो हराम है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए इसके बारे में। इन कुंतुम मुमिनीन, यानी अगर तुम मोमिन हो, अगर मोमिन नहीं हो तो जो चाहे करते फिरो। और फिर आगे अल्लाह ताला वार्निंग भी दे रहे हैं, फा इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा ना किया, फ़ज़नु बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूली, तो तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए। हम ऐसे कौन है, यू नो हु हैज़ दी ऑडेसिटी टू डू दैट। और नरेशंस बताती हैं जो बंदा अपनी ज़िंदगी में सूदी कारोबार करता रहे, सूद का लेन देन करता रहे, तो क़यामत के दिन जब उस बंदे को उठाया जाएगा ना, तो फरिश्ते उसको तलवार पकड़ाएंगे, उसको शील्ड देंगे, वो बोलेगा ये क्या मुझे अभी क्यों पकड़ा रहे हैं, बोलते हैं अल्लाह के रसूल के जंग के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। कोई कर सकता है? ऑथेंटिक नरेशन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर रिबा उ सबउन हुबन, सूद के 70 दरजात हैं, देर आर 70 लेवल्स ऑफ रिबा, व ऐसरा हु, और उसका सबसे नीचे वाला लेवल पता है क्या है, अय्यन की हर रजुल उम्मा हु, अल्लाहु अकबर, उसका सबसे नीचे वाला लेवल ये है यन की हा, निकाह, निकाह जानते हैं ना, यन की हर रजुलू, बंदा निकाह करे उम्माहू अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है जो सूद में डील करता है। बट वी डोंट केयर, ये है सूद। अब आप इस ऐसी सोसाइटी में जहां पे जिन्होंने पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करके रखा हुआ है उनको बोलेंगे ना सूद लेना देना हराम है, वो तो फिर आपको मजा चिखाएंगे, बोलेंगे तुम्हें तो हम बताते हैं तुम्हारा कारोबार खराब करना चाहते हो। और ये ज्यूज किया करते थे, देयर इज व्हाट आई एम सेइंग, वी डोंट नो आर पास्ट, हमें पता नहीं है, हमें मैथ्स के फॉर्मूलास पढ़ाए जाते हैं, हमें साइंस पढ़ाई जाती है, लेकिन जो रियलिटी, जो हमें फायदे देने वाली चीजें ना, उसे हमें जो है साइड पे किया जाता है। जो मदीना के यहूदी थे ना, वहां के दो बड़े कबीले थे ओस और खजरज। यहूदी क्या किया करते, व्हाट ज्यूज यूज टू डू, दोनों कबीलों को आपस में लड़वाया करते थे, अब जब लड़ाई होगी तो हथियार की भी जरूरत पड़ेगी, हथियार जब जंग होगी, हथियार एम्यूनिशन ख़त्म भी होगा, यहाँ से ओस को भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से खजरज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सूद पे माल दे रहे हैं, लड़वा भी रहे हैं, अपने फाइनल ओपोनेंट को कमजोर भी कर रहे हैं, और फाइनेंशियली भी उनको उन्होंने यहां से पकड़ा हुआ है। ये अभी से नहीं चल रहा, शुरू से ही ऐसे चल रहा है। एंड वी मुस्लिम्स, वी थिंक वी आर वेरी स्मार्ट, नोबडी कैन प्ले अस। हम होश करें, हमारे यहां माशाल्लाह, यू नो इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस, वी हैव वेरी गुड इंटेलेक्चुअल्स, हमारे यहां टॉप क्लास के इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे पास आप ये कह लें कि इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे पास वर्ल्ड क्लास के डॉक्टर्स हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग हमारी मत मारी जाती है कि हम कर क्या रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा ना कि जो भी असर रसूख रखते हैं लोग, जब आप उनके लाइफस्टाइल के खिलाफ, उनके यानी द वे दे आर अर्निंग उसके खिलाफ जब आप आवाज़ उठाएंगे ना, जब आप बोलेंगे ना, जब आप कहेंगे हक को हक कहेंगे और बुराई को बुराई कहेंगे, तो जो लोग बुराई फैलाना चाहते हैं ना, जो कि इक्तदार में, वो कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। अगर आप आज कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल, अगर मैं यानी नीचे से अगर बात की जाए, आपको बार बार कहा जाता है कि अपनी आँखों की हिफाजत करो। आई वॉज रीडिंग दी स्टेटिस्टिक्स एंड वल्लाही इट ब्ल्यू माय माइंड, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री दैट इज़ पॉर्न इंडस्ट्री, एंड इट हैज़ अ नेट वर्थ ऑफ अराउंड 100 बिलियन US डॉलर्स। और ये इंडस्ट्री जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, दीज गाइज आर मेकिंग अप्रॉक्सीमेटली $15 बिलियन रेवेन्यू, दीज गाइज आर जनरेटिंग $15 बिलियन रेवेन्यू एवरी ईयर। और मज़े की बात यह है, ये जो रेवेन्यू है ना, दिस इज फार मोर ग्रेटर देन द नेटफ्लिक्स रेवेन्यू। नेटफ्लिक्स भी इतना नहीं कमाती, पूरे हॉलीवुड की उसके रेवेन्यू को जमा कर लिया जाए ना, वो भी इतना नहीं कमाते जितने ये लोग कमाते हैं। और जब फिर एक मुसलमान खड़ा होके बोलता है ना कि अपनी आंखों की हिफाजत करो, तो इन लोगों को तो पसंद नहीं आएगा, हमारा पैसा, हम अपने कारोबार को ख़राब कर दें तुम्हारी वजह से। इस्लाम कहता है वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपनी मुसलमान ख्वातीन से कह दो कि अपनी ओढ़नियाँ डाल दें आगे, दे शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। लेकिन ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम हमारे लाइफस्टाइल को चैलेंज कर रहे हो, हमें फ्रीडम होनी चाहिए, औरत जैसे कपड़े पहनना चाहिए उसको हक होना चाहिए, हु आर यू टू स्टॉप देम, तुम कौन होते हो, तुम हमारी फ्रीडम को तुम चैलेंज कर रहे हो। तो दुनिया नहीं मानेगी, जब आप ये पैगाम लेके खड़े होंगे ना, तो दुनिया वाले नहीं मानेंगे। तो हमें समझना ये चाहिए कि देखो, वी एज लेमैन हम लोग समझ रहे होते हैं कि नहीं यार, हमें हम अपनी डिजायर्स को पूरा कर रहे होते हैं, वेयर एज दीज पीपल आर मेकिंग मनी। आप लोगों को, आम अवामुन नास को तो पागल बना के रखा हुआ इन लोगों ने। तो दिस इज अ सिचुएशन, तो ये सिचुएशन थी कि वरका इब्न नौफल ने कहा कि कोई ऐसा इंसान नहीं आया इस ऐसे पैगाम को लेके, मगर लोगों ने रिटेलिएट ही किया है, उसको बुरा भला ही कहा है। वह इन युद्रिकुनी यौमुख, अगर मैं तुम्हें उस दिन पा लूँ जब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे मोहम्मद, तो क्या होगा, अनसुरू का नसरन मुअज़िरन, मैं लाजिमन तुम्हारी मदद करूँगा। और मुअज़िरन का लफ्ज़ आया, मुअज़िरन का मतलब ये होता है कि जितनी मेरे पास ताकत होगी ना, वॉट सपोर्ट आई कुड डू आई विल डू इट, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे वो माली जो है जो सपोर्ट है, चाहे वो जिस्मानी सपोर्ट है, अगर मुझे फिजिकली आपको सपोर्ट करना पड़े, आई विल सपोर्ट यू। और फिर कहते हैं काश के मैं जवान होता, काश के पास मेरे पास ताकत होती कि मैं आपको सपोर्ट करता, क्योंकि जवानों का काम होता है हक को पहचानना, हक के साथ खड़ा होना, ये जवानों का काम होता है। लेकिन आजकल जो यंगस्टर्स है ना, उनको किसी और ही लाइन पे लगाया हुआ है। आप लोग और हम, यानी हम, यू नो, इफ यू टॉक अबाउट यंगस्टर्स, जिन चीजों में हम इन्वॉल्व है ना, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, हम अपनी जिंदगी से चाहते क्या हैं। आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, आज तक जब भी कोई रेवोल्यूशन आया ना, कभी भी कोई इनकलाब आया, बूढ़े लोग इनकलाब लेके नहीं आते। अल्लाह ताला कोई ना कोई किसी यंगस्टर के दिल में ईमान उतार देते हैं और फिर वो खड़ा होता है। सलाहुद्दीन अयूबी रहिमहुल्लाह को आप देखें, मोहम्मद बिन कासिम को देखें, आप ये हमारी हिस्ट्री तो भरी हुई है। तारिक इब्ने ज़ियाद को देखें, जाते हैं यानी अटैक करने के लिए गए हैं, मुसलमान साथ में हैं, यानी पीछे जब कश्तियों में आए हैं, यानी मुसलमान जब जो है ना, यू नो दे वेंट ऑफ दी, यानी बोट्स जब वो जो है कश्तियों से जब आके आगे आए हैं, तो उन्होंने कश्तियाँ जला दी। क्यों जलाई? ताकि ख्याल भी ना रहे कि हमने वापस जाना है, डू और डाई वाला काम है यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट द यू नो द मुस्लिम्स आर, यानी ये हमें, हमारी हिस्ट्री हमें सिखाती कि यानी मर्दानगी क्या चीज होती है। तो फिर कहते हैं कि अंसुरु का नसरन मुअज़िरन, कि मैं तुम्हें लाजिमन सपोर्ट करूंगा। और ये जब बात कहते हैं तो फिर नरेशन बताती है ثم لم يلبث ورقة أن توفي, लेकिन होता ये है कि रियलिटी में कि कुछ ही दिन गुजरते हैं, एंड ही पैसेज अवे, जो है वो फोत हो जाते हैं। तो ये नरेशन है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें यानी लेसन्स हैं हम लोगों के लिए, वो ये कि एक तो वरक़ा इब्न नौफल ही वाज ट्रू टू हिज वर्ड्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनल मोमिनीन अल्लज़ी मिनल मोमिनीन रिजालुन सदकु मा आहदुल्लाह अलैह, कि मोमिनीन में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने वादे को सच कर दिखाया जो कि उन्होंने अल्लाह ताला से किया था। एंड देन वरक़ा इब्न नौफल ने जैसे कहा था ना कि मैं आपका सपोर्टर बनूंगा, मैं भी आपका हवारी बनूंगा और मैं आपका जो बर्डन है वो शेयर करूंगा, लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से उनको इतनी ज़िंदगी मिली नहीं। और फिर इसमें भी हिकमत ये है कि जो नौफल हैं वरक़ा के जो फादर हैं, व्हाट ही यूज़ टू डू इज़ बल्कि नौफल एक्चुअली हज़रत खतीजा के भाई भी हैं, उनका भी नाम नौफल इब्न खुवैलिद है। तो नौफल किया ये करते थे, नौफल ही यूज़ टू टॉर्चर अबू बकर और ज़ुबैर बिन अल अवाम को टॉर्चर किया करते थे कि जब ये इस्लाम का पैगाम आम होने लग गया तो अबू बकर को और ज़ुबैर बिन अल अवाम को टॉर्चर ऐसे किया करते थे यानी प्राइवेसी में, क्योंकि चूंकि ये कुरैश के यानी कबीलों में से थे तो इनका एक अपना तरीका था ताकि हमारी कबीले की बेइज्जती ना हो। और ज़ुबैर बिन अल अवाम हिज एज वॉज अप्रोक्सीमेटली 12 ईयर्स, 12 साल के थे, तो इनके यही अंकल इनको एक मैट में रोल करके ना, ये जो खजूरों का मैट होता है वो एक बना के मैट रोल करके नीचे से बॉटम से आग लगाया करते थे जिससे उनके फीट जल जाया करते थे। और नरेशंस बताती हैं द पीपल ऑफ मक्का दे यूज टू हेयर द स्क्रीम्स ऑफ ज़ुबैर बिन अल अवाम, यानी उनकी चीखों की आवाज़ें आया करती थी। तो दिस इज़ हाउ यू नो दीज पीपल टॉर्चर्ड ज़ुबैर एंड अबू बकर। और समझ में ये बात आती है, देखें अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। अगर तो वरक़ा ज़िंदा रहते तो हो सकता था, जैसे मक्का वाले हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई भी कमी आए, उनको कोई परवाह नहीं थी कि लात यानी लात उज़्ज़ा हुबल एक ऐसे खुदा हैं। उनको बुतों की जब बात आती थी तो यू नो दे थॉट इट्स मनी मेकिंग मशीन्स, कि यार इसे तो हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, हमारी ज़िंदगी और अच्छी हो रही है, उनको अपने पैसे की फिक्र थी। तो कोई भी रास्ते में रुकावट आएगी तो हम उसको जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। तो हो सकता है अगर वरक़ा ज़िंदा रहते उस वक्त तक तो वो भी किसी ना किसी तरीके से उनको मार देते और कहते कि ये तो वैसे भी इनकी एज इतनी ज़्यादा है, तो वही बहाना मारते कि यार ही डाइड एज अ नॉर्मल डेथ। तो अल्लाह ताला ने उनको जो है इसी हालत में इस दुनिया से ले गए। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि कुछ नरेशंस बताती हैं, आपने भी सुना होगा, कि मर्दों में से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ही वाज़ द फर्स्ट बिलीविंग मैन के जो ईमान लेके आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वरक़ा जो हैं, हालांकि जो पहले बंदे को जो मिलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वरक़ा हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, हु इज़ द फर्स्ट मैन हु बिलीव्ड इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ इट अबू बकर या वरक़ा? व्हाट इज़ योर इनपुट ऑन दैट? माशाल्लाह, वेरी गुड ब्रदर, ने बड़ी अच्छी बात की है कि उलमा में ना स्कॉलर्स में इख्तलाफ है, ठीक है। ज़्यादातर रुझान उलमा का यही है कि वो कहते हैं ही इज़ द मुसद्दिक, सद्दका युसद्दिकु तस्दीकन, यानी तस्दीक करने वाले वो वरक़ा हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी नबूवत की तस्दीक की है, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज लेके आए थे ना वहाँ तक पहुँचे नहीं, वहाँ तक उनको जो है मौका ही नहीं मिला। और इसमें इमाम ज़हबी हैं रहिमहुल्लाह, उनकी भी जो है उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि अदरक नबुवा, कि नबुवत तक तो वो पहुंच गए थे, ठीक है, नबुवत को उन्होंने एक्सेप्ट किया, वलम युद्रिक अर्रिसाला, कि जो नबी करीम सल्लम मैसेज लेके आए थे ना वो उन तक नहीं पहुंचा। तो ही इज़ ए मुसद्दिक बेसिकली। और कुछ लोग कहते हैं कि अबू बकर जो हैं वही फर्स्ट सहाबी हैं जो कि नबी करीम सल्लम पे ईमान लेके आए। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब ज़ैद बिन अमर इस दुनिया से चले गए थे तो उनके बेटे सईद वो आए थे बड़ा घबराते हुए कि लेट मी आस्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ माय फादर, कि मेरे फादर आया जन्नत में गए हैं जहन्नम में हैं कहाँ पे हैं। तो उन्होंने भी पूछा था कि आपको मेरे फादर का पता है कि वेयर डू यू सी जैद, वो कहाँ पे हैं। तो वो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। तो इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन शी ओसो कम्स टू द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आती हैं और पूछती हैं कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्नहु कद सदक़क, आप जानते हैं कि उन्होंने आपकी तस्दीक की थी, वरका के बारे में बात हो रही है, व इन्नहु माता कबला अन तुज़हर, और उनकी फोतगी हो गई थी, वो फोत हो गए थे, कबला अन तुज़हर यानी इससे पहले कि आप पर रिसालत जो है जाहिर होती। तो क्या आप कहते हैं, व्हाट इज़ योर आंसर ऑन दैट। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं या खदीजा, ए खदीजा, रअईतु वरका फिल मनाम, मैंने वरका को ख्वाब में देखा है, एंड व्हाट आई सी, व अलैहि थियाबुम बियाद, और उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, वरका इबन नौफल ने। और फिर कहते हैं वलौ काना मिन अहलि नार, अगर तो वो अहले जहन्नम में से होते तो फिर मैं उनको इस हालत में ना देखता, सफ़ेद कपड़ों में ना देखता। इस तरह की और भी नरेशन हैं, इंशाल्लाह एक दो नरेशन मैं सामने रखूँगा, फिर लास्ट फ्यू वर्ड्स एंड देन विल फिनिश इट ऑफ। इब्ने साकिर हैं, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार पूछा गया, सुइला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन वरका, वरका के बारे में पूछा गया, तो फ़काला, कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबसरतुहु फिल बुतनानिल जन्ना, मैंने उनको देखा है वरका बिन इबन नौफल को जन्नत में देखा है। कहाँ पे, बुतनान, बतन कहते हैं अरबिक लैंग्वेज में पेट को कहते हैं, यानी इन द मिडल ऑफ जन्ना, मैंने वरका को देखा है, ही इज़ इन द मिडस्ट ऑफ जन्ना, अलैहि सुंदुस, और उन्होंने सिल्क पहने हुए हैं कपड़े। और एक और नरेशन में आता है, अल हाकिम की नरेशन है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा नरेट करती हैं कि समिया रजुलुन यसुब्बु अला वरका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना एक बंदे को जो कि बुरा भला कह रहा था, गाली दे रहा था वरका इबन नौफल को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोका, कहा ला तसुब्बुल वरका, वरका को बुरा भला मत कहो, अमा अलिमत अन्नी रअईतु लवरका जन्नतन औ जन्नतैन, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने वरका को जन्नत में देखा है और उसके लिए जन्नत है या दो जन्नतें हैं, जन्नतैन। और यही बात, सेम बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैद के लिए भी की थी, कहा था रअईतु ज़ैदिन जन्नतैन, मैंने जैद के लिए, जैद को देखा है और उनके लिए दो जन्नतें हैं। तो ये जो है वरका इबन नौफल की स्टोरी है। और आखिर में आप मुझे बताएं, मैं से हाफिज़ कौन है, कोई हाफिज़ है? अच्छा, राइट। कुरान मजीद में When is the last time ईसा अलैहि सलाम is mentioned? कि ईसा अलैहि सलाम के बारे में कुरान मजीद अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो लास्ट टाइम कब ईसा अलैहि सलाम मेंशन होते हैं, कौन सी सूरत में? सूरह सफ़ में, सूरह सफ़ में ईसा अलैहि सलाम का जो है ही इज़ मेंशन, यू नो द लास्ट टाइम। और आयत कुछ यूँ है कि वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैय मिन अत-तौरात व मुबशिरन बिरसूलिन यती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की तरफ से रसूल आया हूँ, और मैं तस्दीक करता हूँ जो मेरे सामने है यानी तौरात की, और मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ, आई एम गिविंग यू ग्लैड टाइडिंग्स बे रसूल यती मिन बाद इस्मुहु अहमद, के मेरे बाद एक रसूल आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा, विच इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब देखें कि ये कुरान मजीद में दिस इज़ द लास्ट मैसेज ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, और मक्का में वरका इबन नौफल ही इज़ द लास्ट क्रिश्चियन लिविंग इन मक्का, एंड ही इज़ द फर्स्ट वन टू बिलीव इन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वो जो लेगेसी है वो आप देख रहे हैं कैसे कनेक्शन जो है मैच हो रहा है। तो सुबहानल्लाह, दिस इज़ द कनेक्शन। और एक और बड़ी ज़बरदस्त आयत है, सूरह सफ़ की आयत है, अल्लाह ताला एड्रेस करते हैं ईमान वालों को, और जब वरका इबन नौफल इस दुनिया में थे तब तो कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ था ना, वल्लाही बिल्कुल जो है रिसेंबल करती है ये आयत जो वरका इब्न नौफल ने किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह ताला के मददगार बन जाओ, अल्लाह ताला की मदद करने वाले बन जाओ। कमा कौल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह, उसी तरह जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों से कहा था, जो उस वक्त के सहाबा थे, उस वक्त के मुसलमान थे, उनसे कहा था मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह ताला के लिए मेरे कौन मददगार बनेंगे इस काम के लिए। तो फिर कौल अल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, तो फिर हवारियों ने कहा था, उस वक्त के सहाबा जो थे सहाबा इकराम, उन्होंने कहा था कि हम बनेंगे अल्लाह ताला के, जो है अल्लाह ताला के लिए आपके मददगार बनेंगे हम। तो सुभान अल्लाह, दिस इज़ व्हाट वरका सेड। उन्होंने क्या कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हालांकि अब देखिए, अभी आयात बाद में नाजिल हो रही हैं, एंड ही सेड एग्जैक्टली व्हाट इज़ अल्लाह सुबहान व तआला इज़ रिवीलिंग, जो बाद में आयात आती हैं। और ये देखें, ये सिर्फ आयत उस वक्त के लिए नहीं थी, अल्लाह ताला हमें एड्रेस कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह ताला की मदद करने वाले बन जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला को तुम्हारी और मेरी मदद की ज़रूरत है इस दीन को गालिब करने के लिए? खुदा की कसम, अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुबहाना व ताला हैज़ जस्ट ही हैज़ टू से कुन फयकुन, और वो काम हो जाएगा। बंदों के दिल अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला की दो उंगलियों में है, उनका दिल फेरना अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि तुम अपना पार्ट प्ले कर रहे हो कि नहीं कर रहे। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? और इसमें बड़ी वईद भी है आपके लिए और मेरे लिए, वार्निंग है। अल्लाह सुबहाना व ताला सेज व इन ततवल्लव, अगर तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ा ना, तुमने अगर तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह अदा नहीं की, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। आज तुम्हें बड़ा अपने ऊपर गुरूर है ना, तकब्बुर है कि हम उम्मत मुहम्मदी हैं, हम आशिक रसूल हैं, और कर तुम बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे होते हो। तुम बल्कि शैतान के कामों को सपोर्ट कर रहे होते हो, तुम अल्लाह ताला के मददगार नहीं बनते। हम अपने अमल से, अपने अमाल से हम शैतान के सपोर्टर बन रहे होते हैं। व इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम, फिर जो तुम्हारे बाद में आने वाले लोग होंगे ना, वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। सो मे अल्लाह सुबहाना व ताला गिव अस द राइट अंडरस्टैंडिंग, मे अल्लाह सुबहाना व ताला मेक अस ऑफ दोज हु आर रियली द हेल्पर्स ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला, ताकि हम ये, और देखें हम मदद करेंगे इसमें, हमारी अपनी जो है कामयाबी होगी इसमें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।